नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यानमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। एक ही नंबर के दो मतदाता फोटो पहचान पत्र का अर्थ यह नहीं कि पहचान पत्र फर्जी है। निर्वाचन आयोग, जल विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, जगदीप धनखड़। पूरे देश से 12 अलग अलग मामलों में 29 मादक पदार्थ तस्करों को अदालत ने दोषी ठहराया। अमित शाह, निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 21 लाख वर्ग फुट से अधिक की अतिरिक्त खाद्य भंडारण क्षमता का सृजन कर सराहनीय कार्य किया है। प्रहलाद जोशी, पूरे देश में रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत के अवसर पर लोगों को दी शुभकामनाएं। भारत के आर प्रज्ञा नंदा ने चेक गणराज्य में प्राग मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही नंबर के दो मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC का अर्थ यह नहीं है कि पहचान पत्र फर्जी है या मतदाता बोगस है। आयोग ने एक बयान में यह बात कही। इससे पहले मीडिया की खबरों में दो अलग अलग राज्यों में मतदाताओं के एक ही नंबर के मतदाता फोटो पहचान पत्र का मुद्दा उठाया था। आयोग ने स्पष्ट किया कि कुछ मतदाताओं के EPIC नंबर एक हो सकते हैं, लेकिन जनसांख्यिकी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र जैसे अन्य ब्यौरा अलग होता है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मतदाता सूची में नामांकित है, वहां वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है। इसके अलावा मतदाता कहीं और वोट नहीं डाल सकता। आयोग के अनुसार मतदाता सूची के डेटाबेस को एरोनेट प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने से पहले विकेंद्रीकृत और मैनुअल व्यवस्था के कारण अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ मतदाताओं को एक ही संख्या वाले मतदाता फोटो पहचान पत्र आवंटित हो गए थे। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी आशंका को दूर करने के लिए पंजीकृत मतदाताओं को विशिष्ट EPIC नंबर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। डुप्लीकेट EPIC नंबर के मामले में विशिष्ट EPIC नंबर प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात यात्रा के दौरान आज जामनगर जिले के पशु राहत और पुनर्वास केंद्र वनतारा गए। वनतारा लगभग 3000 एकड़ क्षेत्र में फैला पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। प्रधानमंत्री आज बाद में सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। श्री मोदी गिर नेशनल पार्क के मुख्यालय सासन जाएंगे और श्री सोमनाथ न्यास की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह न्यास विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन संभालता है। प्रधानमंत्री कल एशियाई शेरों के निवास स्थल गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी पर निकलेंगे। श्री मोदी वन्य जीवन से जुड़े राष्ट्र स्तर के मुद्दों पर चर्चा के लिए सासन में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बोर्ड वन्य जीवन और वनों के संरक्षण तथा विकास के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विकसित भारत अब एक सपना नहीं है, बल्कि यह हमारा उद्देश्य है और देश के युवा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे आज भारतीय विचार केंद्र द्वारा तिरुवनंतपुरम में आयोजित चौथा पी परमेश्वरन स्मारक व्याख्यान दे रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि देश में आज जो भी हो रहा है, उससे विश्व में हमारा गौरव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जो ग्राम स्तर पर भी संगठित है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द ये 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ हमें संवाद और विचारों को ग्रहण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बताया है कि पूरे देश से अलग अलग मामलों में 29 मादक पदार्थ तस्करों को अदालत ने दोषी ठहराया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार मादक पदार्थ तस्करों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये तस्कर युवाओं को नशे की गिरफ्त में लाकर उनका जीवन नष्ट कर देते हैं। श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए जांच पड़ताल के साथ नशीली दवाओं के खतरे से लड़ना जारी रखेगी। पूरे देश में रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। लोग कल रात बड़ी संख्या में मस्जिदों में पहुंचे और विशेष नमाज तरावी अदा की। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और महीने के अंत में ईद उल फितर मनाया जाता है। खारी देशों में आज पवित्र माह रमजान का दूसरा रोजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि रमजान से समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि रमजान का पवित्र महीना श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है और देशवासियों को करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की भी याद दिलाता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश में आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में केंद्रीय भंडारण निगम CWC की भूमिका को रेखांकित किया। केंद्रीय भंडारण निगम के 69वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में अपने वीडियो संदेश में श्री जोशी ने कहा कि निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 21,00,000 वर्ग फुट से अधिक की अतिरिक्त खाद्य भंडारण क्षमता का सृजन कर सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय भंडारण निगम की दालों, कपास और मूंगफली के भंडारण, परिचालन और धुलाई के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री BL वर्मा और निमुबेन जयंतीबाई भाम्बनिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे। देश के सकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रहण इस वर्ष फरवरी में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.1% बढ़कर 1,84,000 करोड़ रुपए हो गया। फरवरी लगातार 12वां महीना है जब 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक GST का संग्रहण हुआ है। आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय GST से 35,204 करोड़ रुपए, राज्य GST से 43,704 करोड़ रुपए, एकीकृत GST से 90,870 करोड़ रुपए और मुआवजा उपकर से 13,868 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। फरवरी के दौरान 20,889 करोड़ रुपए का रिफंड हुआ। रिफंड में छूट के बाद फरवरी में शुद्ध GST संग्रह 8.1% बढ़कर लगभग 1,63,000 करोड़ रुपए हो गया। सकल GST राजस्व में फरवरी के दौरान घरेलू राजस्व में 10.2% की वृद्धि के साथ 1,42,000 करोड़ रुपए और आयात से राजस्व में 5.4% की वृद्धि के साथ 41,702 करोड़ रुपए शामिल है। पिछले वर्ष फरवरी में सकल GST राजस्व संग्रहण 1,68,000 करोड़ था। इस साल जनवरी में GST कलेक्शन सालाना 12.3% के उछाल के साथ 1,96,000 करोड़ रुपए रहा। एक नए अध्ययन के अनुसार पिछले दशक में देश में गरीबी में महत्वपूर्ण कमी आई है। प्रमुख अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण बसीन द्वारा प्रकाशित आलेख में वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के हाल ही में जारी घरेलू कर्ज के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में गरीबी के स्तर में कमी आई है। अध्ययन में दावा किया है कि देश में अत्याधिक गरीबी लगभग समाप्त हो चुकी है। अध्ययन के अनुसार इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2023-24 तक की अवधि के दौरान देश में असमानता में भी तेजी से कमी देखी गई है। उत्तराखंड में चमोली के मणा गांव के पास हुए हिमस्खलन में बचाव दल को आज एक और शव मिला, जिससे मृतकों की संख्या 5 हो गई है। हिमस्खलन में फंसे बाकी 3 मजदूरों को बचाने के लिए अभियान जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आपदा निमंत्रण कक्ष पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सेना, ITBP, NDRF और SDRF सहित जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव अभियान में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन और बचाव दल के अनुसार एक लापता मजदूर हादसे से पहले ही घर जा चुका था। पिछले दिनों मणा गांव के पास हुए हिमस्खलन की घटना में प्रभावित मजदूरों की संख्या अब 54 हो गई है, जो पहले 55 बताई गई थी। भारत के आर प्रज्ञानंदा ने चेक गणराज्य में प्राग मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में जर्मनी की विंसेंट कीमर को हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल की। इस बीच भारत के अरविंद चिदम्बरम और अमेरिका के सेम शंकलैंड की बाजी ड्रॉ रही। प्रज्ञानंदा और चिदम्बरम के चौथे दौर के बाद 3 अंक है और वे शीर्ष पर चल रहे हैं। अन्य मैचों में शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की वेई यी ने चेक गणराज्य की डेविड नवारा को हराया, जबकि नीदरलैंड के अनीश गिरी और तुर्की के गुरेल अदेज की बाजी ड्रॉ रही। चेक ग्रैंडमास्टर UN थाई दाइवान ने वियतनाम के ख्वांग लेम ले के साथ ड्रॉ खेला। दोनों भारतीयों ने अन्य खिलाड़ियों से पूरे 1 अंक की बढ़त बना रखी है। प्रतियोगिता में अभी 5 राउंड शेष है और ऐसा लग रहा है कि खिताब की दौड़ भारतीय खिलाड़ियों के बीच रहेगी। इसराइल रमजान के दौरान गजा में अस्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने आज सुबह एक बयान में कहा है कि वह अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉप के युद्ध विराम विस्तार प्रस्ताव को लागू करने पर सहमत हो गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।